आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। लोकसभा और रियासती असेंबलियों में खवातीन के एक तिहाई रिजर्वेशन से मुतालिक आईनी तरमीम का बिल लोकसभा में नाकाम हो गया है। एनडीए से वाबस्ता खातून अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट इहाते में अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ धरना दिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अपोजिशन की तरफ से खुशी मनाया जाना उन खवातीन की तौहीन है जो कई दहाइयों से अपने हकूक का इंतजार कर रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात से पहले जो जब्ती का अमल शुरू किया था वो 865 करोड़ रुपए से भी तजावुज कर गया है। आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों की आमदोरफ्त की हिफाजत के लिए बरतानिया फ्रांस की मुश्तरका क्यादत वाले बहरी इकदाम में भारत को मदऊ किया गया है। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुरमुज पर नाकाबंदी जारी रखी तो वो जवाबी इकदाम करेगा। और खवातीन क्रिकेट में डरबन में पहले T20 में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। आईन में 131वीं तरमीम के बिल को, जिसका मकसद लोकसभा और कानून साज असेंबली में खवातीन के एक तिहाई रिजर्वेशन पर अमल दरामद करना था, लोकसभा में मंजूरी नहीं मिल सकी। इस बिल को लोकसभा में मौजूद कुल 528 अरकान पार्लियामेंट में से 252 अरकान की दो तिहाई अक्सरियत हासिल न हो सकी। बिल के दौरान 298 अरकान ने इसके हक में वोट दिया और 230 अरकान ने इसके खिलाफ वोट दिया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने वोटिंग के नतीजे का ये कहते हुए ऐलान किया कि इस बिल को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है क्योंकि इस बिल की मंजूरी के लिए दरकार अक्सरियत हासिल न हो सकी। इसके बाद एनडीए इत्तेहाद से वाबस्ता खातून अरकान पार्लियामेंट ने अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ पार्लियामेंट इहाते में एक धरना दिया। इसके बाद पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर खवातीन को रिजर्वेशन फराहम करने का मौका गंवाने का इल्जाम आयद किया।
जो नतीजा आया है ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया, बहुत खेद की बात है। और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका तो आपने गंवाया है।
वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन इत्तेहाद पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि ये लोग खवातीन के हकूक देने के फैसलों में हमेशा पीछे हट जाते हैं।
महिला आरक्षण विधेयक का विरोध, हमने 370 समाप्त की, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया। नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया। आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक विरोध किया, एयर स्ट्राइक विरोध किया। 6 पूरे सोचे बगैर नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं इसका विरोध करने का ठान लिया।
वजीर दाखिला ने इस बिल की नाकामी पर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से खुशियां मनाए जाने पर भी नुक्ताचीनी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि अपोजिशन की तरफ से ये खुशियां मनाए जाना हर उस खातून की तौहीन है जो अपने हकूक का कई दहाइयों से इंतजार कर रही है। बाद में ऐवान की कार्रवाई 8:11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्लियामेंट में खवातीन रिजर्वेशन बिल की राह में रुकावट डालने पर कांग्रेस की क्यादत वाली अपोजिशन पर नुक्ताचीनी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नायडू ने कहा कि अपोजिशन के इस कदम से खवातीन को बाइख्तियार बनाने की तारीखी पहल को नाकाम कर दिया गया। उन्होंने कांग्रेस की क्यादत वाली अपोजिशन पर सियासी रखना डालने का इल्जाम लगाया। जनाब नायडू ने मजीद कहा कि इस कदम ने लाखों खवातीन को मुसावी नुमाइंदगी से महरूम कर दिया और मुल्क इसे याद रखेगा। इंतखाबी कमीशन ने इत्तला दी है कि तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात और जिमनी इंतखाबात से पहले 865 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की चीजें जब्त की गई हैं। तफसील हमारे नामनिगार से।
इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि 26 फरवरी से इंतखाबी जब्ती निजाम के फाल होने के बाद से मगरबी बंगाल में 427 करोड़ रुपए मालियत का साजो सामान जब्त किया गया, जिसमें नकद रकम, शराब, मुंशियात, कीमती धातें और मुफ्त तकसीम की जाने वाली अशिया शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने इसी जुमरे के तहत तमिलनाडु में 438 करोड़ रुपए के साजो सामान जब्त करने की भी खबर दी है। कमीशन ने बताया कि मिसाली जाब्ते अखलाक के सख्त निफाज को यकीनी बनाने के मकसद से दोनों रियासतों में तेज रफ्तार रद्द अमल और अचानक मुआयने के लिए 5,000 से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड टीमें और 5,300 से ज्यादा स्टैटिक सर्वेलेंस टीमें तैनात की गई हैं। कमीशन ने इंतजामिया को आवाम को दुश्वारियों से बचाते हुए आजादाना, मुनसिफाना और लालच से आजाद इंतखाबात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इन इकदाम के निफाज से मुतालिक सरगर्मियों की शिकायतों के हल के लिए जिला शिकायती कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
मगरबी बंगाल में इंतखाबी कमीशन ने 5 बूथ सतह के अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। इनकी गैर जानबदारी के बारे में सवाल उठाए गए थे। इनके खिलाफ महकमा जाति तफ्तीश के साथ साथ FIR दर्ज करने की भी हिदायत जारी की गई है। कमीशन के जराये ने इंकशाफ किया कि ये अफसरान किसी सियासी पार्टी के लिए मुबैना तौर पर बराह रास्त काम कर रहे थे। इस दौरान बड़ी सियासी पार्टियों ने मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। मगरबी बंगाल में BJP रहनुमा और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा आज शिमाली बंगाल का दौरा कर रहे हैं। BJP के रियासती सदर सुकंता मजुमदार भी मयूरेश्वर, दुबराजपुर, सेंथिया और दर्जापुर पश्चिम हलकों में अपनी चुनाव मुहिम अंजाम देंगे और दुर्गापुर पश्चिम हलकों में अपनी चुनाव मुहिम अंजाम देंगे। तृणमूल कांग्रेस के लिए झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर के कबायली गलबे वाले जिलों में चुनाव मुहिम अंजाम देंगे। वजीर आला और पार्टी सरबराह ममता बनर्जी मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगी। इस दौरान तेलंगाना के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम अंजाम देंगे। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 23 अप्रैल को रियासत के 152 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। शिमाली बंगाल के मालदा जिले के इंग्लिश बाजार असेंबली हलके पर आज नजर डाली जा रही है। एक रिपोर्ट।
मालदा जिले के इंग्लिश बाजार असेंबली हलके से फिलहाल BJP की रुकन असेंबली श्री पुरा मित्रा चौधरी नुमाइंदगी कर रही हैं। इंग्लिश बाजार में 5 आजाद उम्मीदवार समेत कुल 12 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अमलन भदूरी को जबकि तृणमूल कांग्रेस ने आशीष कुंडू को मैदान में उतारा है। सीपीआईएम ने अंबर मित्रा को जबकि कांग्रेस ने आलम मसूद को टिकट दिया है। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख तक इंग्लिश बाजार में राय दहिंदगान की मजमू तादाद 2,49,000 रही। इस असेंबली हलके में असल मुकाबला BJP और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वाहिद मरहले में होने वाली पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम 3 दिन में खत्म हो जाएगी। वजीर आजम और सीनियर BJP रहनुमा नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर में NDA उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वजीर आजम अपनी आमद के बाद हवाई अड्डे से कोडिसिया की जलसागाह तक रोड शो करेंगे। रियासत के तमाम मगरबी जिलों में BJP का असर काफी बड़ा है। DMK सरबरा और वजीर आला MK स्टालिन ने हदबंदी बिल पर BJP और AIADMK दोनों की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने काले कपड़े पहनकर इसकी मुखालफत की। साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने कहा है कि हदबंदी बिल पूरी तरह आबादी पर मबनी था। उन्होंने वाजे किया कि यह बिल सही मानों में आवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। ऑल इंडिया पुराची तलाईवर मक्कल मुनेत्र करगम की जनरल सेक्रेटरी VK शशिकला ने कहा है कि DMK हुकूमत में जवाबदेही का फुकदान है और इस हुकूमत ने रियासत को कर्ज के संगीन बहरान में धकेल दिया है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से अदा किए जाने वाले 7,000 करोड़ रुपए के कर्ज के दौरान इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे पूरे करने से मुतालिक हुकूमत से सवाल पूछे हैं। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस के उम्मीदवारों के लिए आज तिरुचिरापल्ली के तुरैयार में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इधर TVK के सरबराह अदाकार विजय ने कल शाम चेन्नई के पेरम्बदूर में घर घर जाकर मुलाकात की। रियासती BJP सदर नायनार नागेंद्र और लीडर के अन्नामलाई ने BJP उम्मीदवार और मरकजी वजीर L मुरुगन के लिए तशहीर की मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने DMK हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उसने अपने इंतखाबी मंशूर में 5 साल पहले के लिए किए गए वादे पूरे नहीं किए। अदाकारा और BJP लीडर खुशबू ने वनाथी श्रीनिवासन के लिए कोयम्बटूर शिमाल में तशहीरी मुहिम चलाई। खुशबू ने रियासत में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और मुनशियात के कल्चर का इल्जाम आयद किया। तफसील हमारे नामनिगार से।
तमिलनाडु में वाहिद मरहले की पोलिंग की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रियासत में पोस्टल रायदही जारी है। रियासत में अहम मकामात पर मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स के अहलकारों ने हिफाजती इंतजामात सख्त किए हुए हैं। وزیراعظم نریندر مودی آج دیر شام کوئمبٹور پہنچ رہے ہیں، جس کے لیے شہر میں اضافی حفاظتی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ کل شام سے اتوار کی شام تک ڈرون اڑانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تمل ناڈو سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
ایران نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کمرشل جہازوں کے لیے مکمل طور پر کھلی ہے۔ اس کی طرف سے یہ اعلان اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے دوران کیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر اس قدم کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے سبھی کمرشل جہازوں کی آمد و رفت جنگ بندی کی بقیہ مدت کے دوران مکمل طور پر کھلی ہے۔ البتہ یہ جہاز ایران کے بحری حکام کی طرف سے مقرر کیے گئے تالمیل والے راستے کا استعمال کریں۔ اسی دوران اس اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں 11% سے بھی زیادہ کمی آئی۔ حالیہ ہفتوں میں آبنائے ہرمز عام طور پر بند رہی۔ برطانیہ اور فرانس نے بھی آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت پر ایک کثیر ملکی میٹنگ کا اعلان انعقاد کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے آبنائے ہرمز کے تجارتی کشتیوں کے لیے مکمل کھولے جانے کے ایران کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ جنگ بندی کے حصے کے طور پر کیے گئے اس اعلان کو جناب گوترس نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی جانب مثبت قدم قرار دیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوترس نے عالمی توانائی اور تجارت کے لیے دنیا کی اہم ترین بحری راہداریوں میں سے ایک میں استحکام برقرار رکھنے اور جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی بحریہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اس وقت تک جاری رکھے گی جب تک ایران کے ساتھ کسی جامع امن معاہدے کو قطعی شکل نہیں دے دی جاتی، اگرچہ ایران نے آبنائے ہرمز کے راستے آمد و رفت کو بحال کرنے کا قدم اٹھایا ہے۔ اپنے تیرتھ ٹروتھ سوشل نیٹ ورک کے ذریعے امریکی موقف کی وضاحت کرتے ہوئے جناب ٹرمپ نے کہا کہ یہ بحری ناکہ بندی اس وقت تک پوری طرح جاری رہے گی جب تک ایران کے ساتھ ہمارے معاملات 100% مکمل نہ ہو جائیں۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ اس نے اپنے افسودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ بھارت سے حج بیت اللہ 2026 کی سعادت حاصل کرنے والے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ عازمین کا پہلا گروپ ملک کے مختلف مقررہ مقامات سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوگا۔ خواتین کے کرکٹ میں کل شام ڈربن میں کھیلے گئے پہلے T20 بین الاقوامی میچ میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ بھارت کی جانب سے دیے گئے 158 رن کے لیے کھیلتے ہوئے میزبان جنوبی افریقہ نے 19 اوورز اور 1 گیند میں یہ نشانہ حاصل کر لیا۔ سیریز کا اگلا میچ اتوار کے روز اسی مقام پر ہوگا۔ سیریز کا تیسرا میچ 22 اپریل کو اور چوتھا میچ 25 اپریل کو جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا۔ سیریز کا فائنل میچ بنونی کے ویلو روم پارک میں 27 اپریل کو ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہے مجیب اختر۔
شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن بل سے متعلق آئینی ترمیمی بل پاس نہ ہونے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ بل کے حق میں 298 اور خلاف میں 230 ووٹ ڈالے گئے۔ سرکار نے کہا ہے کہ ہم خواتین کو حق دلانے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ روزامہ ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے ہری ونش کو مسلسل تیسری مرتبہ راجیہ سبھا کا ڈپٹی چیئرمین منتخب کی جانے کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے حج 2026 کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے عازمین حج کی روانگی کے لیے آج سے پروازوں کی شروعات سے متعلق خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ ایران نے اپنا ہرمز مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا شکریہ ادا کیا، البتہ بحری ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ اس خبر کو آج کے بیشتر اخباروں نے اجاگر کیا ہے۔
اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے ایک تہائی ریزرویشن سے متعلق آئینی ترمیم کا بل لوک سبھا میں ناکام ہو گیا ہے۔ NDA سے وابستہ خاتون ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ احاطے میں اپوزیشن پارٹیوں کے خلاف دھرنا دیا۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے خوشی منایا جانا ان خواتین کی توہین ہے جو کئی دہائیوں سے اپنے حقوق کا انتظار کر رہی ہیں۔ انتخابی کمیشن نے تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات سے پہلے جو ضبطی کا عمل شروع کیا تھا وہ 865 کروڑ روپے سے بھی زیادہ تجاوز کر گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے راستے جہازوں کی آمد و رفت کی حفاظت کے لیے برطانیہ فرانس کی مشترکہ قیادت والے بحری اقدام میں بھارت کو مدعو کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔